ओम शांति। सभी कृपया बैठे रहे। अभी और एक इंटरेस्टिंग सेशन शुरू होने वाला है। हम सभी मिलकर के एक बहुत अच्छा टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो आपका लाइफ है, आपका जीवन का साथी है। ये टॉपिक ये है कि राजनीति और सामाजिक उत्तरदायित्व, पॉलिटिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये वर्ड तो आपको बहुत नजदीकी वर्ड है, क्योंकि आप इसमें ही अपना जीवन बिता रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के समाज सेवा करते करते। तो हम आज ये डिस्कशन करेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक पॉलिटिशियन को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को क्या क्या आता है, और उसका सॉल्यूशन, जिसके चैलेंजेस आते हैं, सवाल आते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस हैं, तो इसके ऊपर आप प्रकाश डालें। एक एक करके हम चर्चा शुरू करेंगे, उसके बाद हम समअप करेंगे, उसके बाद आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं जो सामने बैठे हैं, उसका उत्तर भी सभी यहाँ जो पैनलिस्ट हैं वो आपको दे देंगे। मैं अभी इस पैनल का जो मेंबर्स है, पैनलिस्ट है, उनको मंच पर बुला रहा हूँ। मिस्टर तेजपाल सिंह नगर, राष्ट्रीय विधायक दादरी और ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश है। बीके मेहरचंद जी, राष्ट्रीय समन्वयक खेल प्रभाग और जोनल कोऑर्डिनेटर ऑफ पंजाब जोन। मेहरचंद जी, श्री नारायण दत्त शर्मा जी, पूर्व विधायक दिल्ली, श्री विलियम, राज्य सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, श्री गिरीश चंद्र परमार, पूर्व मंत्री गुजरात, ब्रह्मा कुमारी साधना जी, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका, किंग्सवे कैंप सेंटर दिल्ली, सभी पैनलिस्ट का तिलक पटका एवं बैज द्वारा स्वागत करने के लिए मैं अपना ब्रह्मा कुमारी सिस्टर्स को रिक्वेस्ट करता हूं। ओम शांति। अभी हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, सभी थ्री ऑफ देम और पॉलिटिशियंस एंड टू ऑफ देम आर ब्रह्मा कुमार कुमारीज, बट बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। दोनों है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी, वो भी पॉलिटिक्स से संबंध रखे हैं, पॉलिटिशियंस का सेवा करते हैं, और तीनों हमारे भाई पॉलिटिशियंस से, पॉलिटिक्स में बहुत साल से सेवा कर रहे हैं। राजनीति में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना होता है। कुछ इंडिविजुअल लेवल में होता है, कुछ पार्टी के हिसाब से होता है, कुछ कॉम्पिटिशन से होता है, कुछ फाइनेंशियल से होता है, कुछ ईर्ष्या द्वेष से हो जाता है, कुछ हार से होता है। ऐसा बहुत सवाल आते हैं, है ना। तो जब पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स को अपनाते हैं तो ये सभी मालूम होता है, ऐसा ऐसा जीवन में हमको फेस करना है, क्योंकि देखते हैं ना रोज, अखबार में भी पढ़ते हैं और इंडिविजुअल लेवल में भी उनको पता रहता है कि ऐसा ऐसा होता है। इसके लिए भी हम तैयार होना चाहिए। लेकिन जब इलेक्ट होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाते हैं किसी भी लेवल का हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आम आदमी, जो सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन आर देयर, जो लोग हमको वोट दिए हैं या नहीं दिए हैं, उनका जो प्रॉब्लम्स है उनका हम हल करना होता है, ये उत्तरदायित्व हमारा हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम पार करने के लिए बहुत सारे अनुभव का जरूरत है, कॉमन सेंस होता है, कॉन्फिडेंस का जरूरत है, और इस सब के अलावा करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी जरूरी है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मिलता है। तो इसीलिए मैं पैनलिस्ट को थोड़ा क्वेश्चंस पूछता हूं, क्योंकि उत्तरदायित्व तो बहुत सारे हैं, इसमें आप यदि कुछ टॉपिक मैं बोलता हूं तो उस टॉपिक में आपको कैसे आम लोग तक पहुंच सकते हैं, उसमें हमारा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और यदि गवर्नमेंट मेरा साथ है या नहीं है, मैं रूलिंग पार्टी में हूं या अपोजिशन पार्टी में हूं, कुछ भी हो, लेकिन ये सारे चीजें हम जब डिस्कस करते हैं, उत्तरदायित्व सेम है, या सिटिंग एमएलए और एक्स एमएलए और अपोजिशन वाले या रूलिंग पार्टी वाले, सॉल्यूशन सेम रहता है और क्वेश्चंस भी और सवाल भी ऐसा ही रहता है। तो इसीलिए मैं अभी पूछ रहा हूं एक क्वेश्चन, हमारा भाई जी तेजपाल सिंह नगर जी, सामाजिक उत्तरदायित्व में स्वास्थ्य भी एक है, हेल्थ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है सबको हेल्थ देना, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। तो आपका क्षेत्र में 2 लाख होगा, 3 लाख होगा, एमपी है तो 8-10 लोग हो जाएंगे, तो उतने सारे लोगों को आप कैसे ये पहुंचाते हैं स्वास्थ्य के बारे में, और उतने लोगों को आप स्वस्थ कैसे देखना चाहते हैं?
ओम शांति। मैं तेजपाल सिंह नागर, भाजपा का विधायक हूं दूसरी बार, दादरी ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर से। अभी मुझसे पूछा कि स्वास्थ्य के बारे में पूछा, स्वास्थ्य पर परिचर्चा की। मैं ये बताना चाहता हूं, सम्मानित मंच बैठा है, मेरे सामने सभी बहन और भाइयां बैठे हैं, कि मैं जब चुनाव लड़ा 2017 में, मैं पहली बार विधायक बना, उससे पहले मैं छोटे छोटे कई चुनाव लड़ा, 6 चुनाव, क्योंकि मैं जहां से चुनाव लड़ा दादरी ग्रिटनौला से, वहीं का मैं रहने वाला था, वहां की समस्याओं का मुझे मालूम था। मैं अपनी विधानसभा की बात करूं स्वास्थ्य के बारे में, मेरा जनपद गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का हाईटेक जनपद है, उसमें बहुत बड़े उद्योगपति और किसान भी, सेक्टर भी, सोसाइटी भी, कच्ची कॉलोनी भी और देहात भी, गांव भी, इस सारी चीजें हैं। स्वास्थ्य के बारे में एक दिन मैंने अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से कहा कि महाराज जी, मेरे क्षेत्र में दादरी विधानसभा में एक दिन समस्या आएगी स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की क्या समस्या आएगी? किसानों की जमीन चली गई, अधिग्रहण हो गया, उद्योग बन गए, सेक्टर बन गए, सोसाइटी बन गई, किसानों के पास जो मुआवजा मिला वो ज्यादातर किसानों का खर्च हो गया, खत्म हो गया। किसान गांव में किसान भी रहते हैं, गांव में भूमिहीन लोग भी रहते हैं। उद्योग हब होने की वजह से यहां पर मजदूर भी बहुत रहते हैं, पूर्वांचल के लोग वहां पर बहुत रहते हैं। महाराज जी, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, बहुत पैसा जाता है, उनके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा गरीब लोग इलाज से वंचित हो जाएंगे। मैंने जब मुख्यमंत्री जी से सारे क्षेत्र की समस्या अवगत कराई स्वास्थ्य के बारे में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे 100 बेडेड हॉस्पिटल दी। 100 बेडेड हॉस्पिटल में 35 विशेषज्ञ डॉक्टर रहेंगे और गरीब आदमी को, क्योंकि दिल्ली हमारे नजदीक है, सटा हुआ प्रदेश है दिल्ली, दिल्ली में बहुत सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, इसलिए गरीब आदमी को दिल्ली रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, क्योंकि गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य के लिए, ताकि गरीब लोगों का इलाज आसानी से, सुलभता से और सस्ता हो सके, इसलिए मैंने कोशिश की। दूसरा, मैंने अपने मुख्यमंत्री से एक 50 बेड हॉस्पिटल सैंक्शन कराया, तो 100 बेडेड हॉस्पिटल जो निर्माणाधीन है, जिन पर काम चल रहा है, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंजूर कराया, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंजूर कराया मैंने, क्योंकि मेरी उत्तरदायित्व था उन सम्मानित वोटों के लिए, उन सम्मानित साथियों के लिए जिन्होंने मुझे पहली बार और दूसरी बार भारी बहुमत से, पहली बार मैं 82,000 वोटों से जीता, दूसरी बार 1,40,000 वोटों से जीता। तो मैंने अपनी जिम्मेदारी को, जो मेरी जिम्मेदारी थी स्वास्थ्य के प्रति, अपनी जनता के प्रति, मैंने उसको पूरा किया।
थैंक यू वेरी मच। अभी मैं जा रहा हूं नारायण दत्त शर्मा जी, पूर्व विधायक जी दिल्ली से। आपसे प्रश्न पूछने से पहले हमें जानना चाहते हैं कि राजनीति में प्रवेश करने का कारण क्या है आपका?
ओम शांति, सम्मानित मंच और सभी राजनीतिक या दीदी या भाई जो कि ब्रह्मा कुमारी आबू के अंदर आए, आप सभी को प्रणाम, ओम शांति। देखिए, वैसे तो भाई जी कोई योजना जीवन में नहीं बना पाता आदमी, कुछ जर्नी ऊपर से बनकर आती है। आज जितने भी लोग यहां बैठे हैं ये सौभाग्यशाली हैं, 140 करोड़ लोगों के देश में से आपको बाबा ने यहां बुलाया है, यहां आना ही बहुत बड़ी बात है। मेरी जर्नी अब सुनोगे तो अजीब लगेगा, मैं जिस घर में पैदा हुआ आज से 50-60 साल पहले एक सामूहिक परिवार होता था, तो उसमें नागर जी काम पट जाते थे, कोई ट्रैक्टर चलाएगा, कोई ग्वारिया रहेगा। तो मेरे पिताजी और मेरी माताजी दोनों अनपढ़ थे और मैं मथुरा के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, और मैंने देखा कि जो हमारे ताऊ जी का कुर्ता फट जाता था या जूती खराब हो जाती थी वो मेरे पिताजी को दी जाती थी। माताजी और पिताजी दोनों अनपढ़ थे, उनको लगा यार हम पढ़े लिखे नहीं है इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूं। तो उन्होंने कोशिश कर मुझे यूपी के बॉर्डर पर, मेरा गांव है कोटवन, जब आप मथुरा जाते हो दिल्ली से तो जहां से यूपी स्टार्ट होती है वहां एक छोटा सा गांव है, तो उन्होंने मुझे पलवल में पढ़ने के लिए भेजा। एक साल तो अच्छे से पढ़ाई करी क्योंकि पिताजी ने की गरीबी देखी थी, उनके कष्ट देखे थे, उनका पसीना देखा था, लेकिन परिस्थितियों ने ऐसे बना दिया कि वहां राजनीति सी में थोड़ा सा, क्योंकि वहां कुछ लोगों ने बदमाशी कर रखी थी, कुछ लोगों की जमीनें बिक गई थी तो गाड़ियों से आते थे और जो गरीबों के बच्चे पढ़ते थे उनसे कहते थे सिगरेट लेकर आ या उस तरह का। जब लगा कि टीचर को भी अगर कोई स्टूडेंट जलील कर रहा है सिर्फ इसलिए कि उसका 10 करोड़ रुपए का खेत बिक गया उसके साथ में 20 बच्चों की, तो उसका विरोध किया और एक वक्त ऐसा आ गया कि कॉलेज के अंदर राजनीति में पड़ गया जी। उसके बाद में कॉलेज करने के बाद में दिल्ली आया नौकरी करने के लिए, नौकरी की कुछ दिन, फिर अपना एक व्यापार किया, बाबा की कृपा से सब ठीक रहा। छोटी सी उम्र में शादी होगी, 15 का चुनाव में लड़ रहा था और नागर जी आप जानते होंगे जिनके सामने में चुनाव लड़ रहा था बदरपुर में वो हजार हजार करोड़ के आदमी है जी, और 30 साल से वो राजनीति में फाइनेंशियली और पॉलिटिकली बहुत मजबूत लोग थे। अब मेरा जैसा व्यक्ति जो 100 किलोमीटर दूर से दिल्ली में नौकरी करने के लिए आया है और वो चुनाव लड़ रहा है एमएलए का, तो एक मेरे एरिया में ज्ञान मंदिर है, मैं बताऊंगा वो ज्ञान मंदिर उसका नाम क्यों पड़ा। तो मैं ज्ञान मंदिर पे 50 लोगों के साथ में डोर टू डोर कर रहा था, पदयात्रा कर रहा था, तो मेरे जो सामने चुनाव लड़ रहे थे वो लोग, उनका एक काफला आता है उसमें करीबन 200-400 गाड़ियां थी, डीजे थे, कान टूटे हुए पहलवान थे, और जब सामने कोई विपक्ष का कोई अपोजिशन वाला आता है तो भाई जी उसको हूटिंग भी सुननी पड़ती है, क्योंकि जब उसके पास दलबल कम होता है तो उनके जो लोग होते हैं जो पेड वर्कर होते हैं बड़ा हूटिंग करते हैं। तो उस वक्त मैं ज्ञान में नहीं था, कभी बाबा के वहां नहीं आया था जी मैं, तो उस ज्ञान मंदिर पर ब्रह्म कुमारी का एक सेंटर है, तो मुझे लगा कि अगर इधर से गाड़ियां आ रही हैं और इधर से रोड है और सामना होगा तो मैं उस सामने के मारे हूटिंग के मारे उस सेंटर में चला गया, पहली बार गया था जी, और मैं टूट कर गया था, बिखर कर गया था, और मुझे दिखा कि मैं कहीं भी नहीं हूं, मैं सुबह 9 हार जाऊंगा जिस तरीका से सामने वालों के पास पब्लिक का रेला है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, 50 से इतना बड़ा चुनाव नहीं जीता जाता, 3-3.5 लाख लोगों के बीच में मैं चुनाव लड़ रहा था जहां वोटर है वहां पे। तो मैं टूट कर बिखर कर हार कर बाबा के वहां गया, तो उस वक्त शायद क्लास नहीं चल रही थी, गेट मैंने खोला तो उसमें चला गया, मेरे जो साथी थे वो खड़े हो गए और मुझे बाबा के एक रूम नजर आया बिल्कुल सामने ही है। गंगाराम भाई जी मैं उस बाबा के कमरे में बैठा और मेरी आंखों से आंसू निकल गए कि क्यों बेमतलब की परमात्मा कहां ले आया, और मैंने कि बाबा क्या कलेश में पाड़ दिए, छोटे छोटे बच्चे थे ना, बच्चों को देख पा रहा हूं और 2 महीने से चुनाव में गली गली घूम रहा हूं और जिन लोगों का ये 15 पहले टिकट मिली है इनको, मुझे 1 महीने पहले मिली है, इन्होंने 15 में पूरी जनता खरीद ली, और मैं बाबा के सामने मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मुझे ये थी कि ये जो डीजे का शोर शराबा खत्म हो और मैं यहां से निकलूं। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं बाबा के बच्चों के बीच में कि मैं टूट कर बिखर कर हार कर बाबा के वहां बैठा था, जब मैं वहां से उठा तो मेरे मन में वो ऊर्जा थी, वो ताकत थी, और मुझे ऐसा लगा ये सब हारेंगे, मतलब मेरा मनोबल बढ़ गया और इतना बढ़ गया उनके डीजे बज रहे थे और मैं आकर गेट पे खड़ा हो गया। वो कैंडिडेट निकल कर जा रहा है, मैंने उसको भी नमस्ते किया, उसको भी फेस किया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं जी, आप गूगल पे सर्च करिएगा, एक गरीब किसान का बेटा 2015 के अंदर चुनाव लड़ रहा है, पहला चुनाव लड़ रहा है, और अगर दिल्ली के अंदर अगर फर्स्ट विनर आंकोगे, गूगल बताएगा 9:16 पर 50,000 वोटों से 1,000 करोड़ के प्रत्याशी को हराकर मैं विधानसभा गया था जी। और जिस दिन नागर जी मेरा रिजल्ट आया, मैं काउंटिंग में नहीं गया, मैंने फोन बंद कर लिया। मैंने कि जब टीवी पर देखूंगा जीत रहा हूं जब जाऊंगा। और मैंने कि 12-1 बजे आएगा, तो मैंने बाबा का ध्यान करके, मैं वहां तो गया नहीं ज्ञान मंदिर पे, मैं कहीं और कहीं चला गया। 9:16 पर ही मेरा टीवी में आ गया कि नरेंद्र सबसे पहली सीट और सबसे छोटा आदमी। आप ये सोच के चलिए, जब मुझे वो सर्टिफिकेट मेरे हाथ में, जब मैं वहां से गया लेने के लिए, तो 500-400 गाड़ियों का काफिला हो जाता, जीत के साथ में बहुत लोग आपको मिल जाते और पता नहीं होता ये कब तक तुम्हारे साथ है। तो जैसे ही वो सर्टिफिकेट मुझे मिला, तो लोगों ने कह दी जी पहले वहां चलना है, वहां पैसों से तोला जाएगा, वहां लड्डुओं से तोला जाएगा, पहले उस मंदिर में चलना है। मैंने उसके लिए बोला था, सब लोगों को लगता है जी कैंडिडेट जीत कर आया है तो इसका जितनी जल्दी हम अपने दरवाजे पर स्वागत कराएं। जैसे ही सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आया, तो मुझे वो बाबा का वो सीन याद आ गया। यहां हमारे बीच में ज्ञान मंदिर से बिंदु दीदी जी और सोनी दीदी जी आई होंगी, वो गवाह इस बात की, वो बैठी हैं। मैंने बोला, मैंने कि मेरे भाई इन गाड़ियों को सीधी ज्ञान मंदिर पर ले चलिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सबसे पहले अपने बाबा के पास जाऊंगा जिसके बल से आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। बड़ी दीदी राजयोगिनी बीके उषा जी उसका संचालन कर रही हैं। वो ज्ञान मंदिर क्या है? वो ज्ञान मंदिर ये है कि कोई तो किसी नेता के पास जाके अपने महापुरुषों के नाम मांगता है, उस रोड का नाम ही ज्ञान मंदिर है जी। तो मैं वहां से भाई जी सीधा ज्ञान मंदिर गया। और मैं ये कहता हूं, मुझे कोई नेता होने का घमंड नहीं है, मुझे बाबा का बेटा होने का घमंड है। मैं 2016 से कंटिन्यू यहां आता हूं जी। आप ये क्लियर है जीवन में कि सबने जाना है। मैं बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों के साथ बैठा हूं, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठा हूं, जो स्माइल, जो खुशी, जो चेहरे पे बिना बनावटी स्माइल है, वो सिर्फ बाबा के बच्चों की है जी और बाबा की बेटियों की है, बाकी कहीं नहीं है। आदमी टेंशन में जी रहा है, नींद की गोली खाकर सो रहा है, इसलिए जो हो रहा है उसको स्वीकार करना सीखिए। राजनीति में जैसे भाई जी ने बताया, बहुत चैलेंजेस है। अभी मैं बीजेपी से चुनाव लड़ाऊं जी, और एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपके बीच में भाई जी, मेरा जब चुनाव चलता है, जब तक मुझे टिकट विकट नहीं मिलती है, तब तक तो मैं कोई प्रोग्राम ज्ञान मंदिर के मिस नहीं करता हूं ना दीदी। जब भी दीदी अर का कोई प्रोग्राम होता है, मेरे हिसाब से हर महीने कोई प्रोग्राम होता है, और मैं एक बाबा का बेटा बनकर जाता हूं, नेता बनकर नहीं जाता उसमें। लेकिन जैसे ही मेरा चुनाव शुरू हो जाता है, मैं वोट मांगने के लिए कभी उस सेंटर में नहीं जाता जी, क्योंकि बाबा को पता है, पिता को पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या ठीक है। चुनाव हारना जीतना, अरे जिसका रथ अर्जुन ने हांका था ना रोज, तो वो भी नहीं जीता था। हम मांगते हैं कि खुशी खुश मिले, हमें सुख मिले। उनको देखिए ना, अर्जुन ने पूछा था केशव से कि परमात्मा विधाता बड़ा है या विधि का विधान बड़ा है। तो केशव ने कहा था, पार्थ मुझे, मैं राधा को प्रेम करता था, मीरा मुझे चाहती थी, लेकिन ये विधि का विधान में रुक्मणी का होकर रह गया। तो जीवन में जो बनकर आया है वो तुम्हें मिलेगा। छोटी छोटी चीजों पर टेंशन ना ले। और रही बात देश के अंदर, बहुत संस्थाएं हैं जो आपको और भी कुछ देती होंगी, धर्म की बातें भी करती होंगी, सब अच्छी हैं। लेकिन इस धरती पर एक ऐसी संस्था है जी, जो आपको आपसे मिलाकर भेजती है। अगर आप इस संस्था में आए हो, आप जब से पैदा हुए दुनिया को देखते हो, लेकिन यह संस्था आपको अपने अंदर झांकने, यानी कि आपको अपनी आत्मा से मिलाने का काम करती है। मेरा इतना सा छोटा सा एक्सपीरियंस है, राजनीति में कुछ मिले ना मिले, लेकिन मुझे ये परिवार मिल गया, और उस परिवार के सारे से मुझे हर वो परेशानी झेलने की ताकत मिल गई। एक तो ये समझ लीजिए कि आप यहां आ गए हो तो परेशानी नहीं आएगी। सगा भांजा था भगवान कृष्ण का, ऐसे ना जी, सगा भांजा अभिमन्यु।
थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा था आपका एक्सपीरियंस। अभी हम सुनेंगे श्री गिरीश चंद्र परमार से। भाई जी ने बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, गुजरात का पूर्व मंत्री भी है, और उनसे मैं जानना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया है कि सारे नागरिकों को समान अवकाश मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सब प्राप्तियां इक्वली बांटना चाहिए। आपका जीवन में एज पॉलिटिशियन और एज कैबिनेट मिनिस्टर इन गुजरात गवर्नमेंट, आपने ये सोचा है कि रियली पॉसिबिलिटी है समान अवसर, या कितना परसेंटेज तक हम कर सकते हैं एज ए पॉलिटिशियन समान अवसर आपका क्षेत्र में या आपका स्टेट में?
ओम शांति। आज के इस पैनल डिस्कशन में बहुत अच्छे सवाल पेश हुए हैं। मेरे लिए जो बात आई है, आई एम बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने इस देश का संविधान बनाया, और संविधान में यही बात बताई उन्होंने कि पूरे देश में जो नागरिक है, पूरे देश के जो, वो सब एक समान, न धर्म न जात न पात। और जो संविधान में जो उन्होंने बताया है कि संविधान गरीब झोपड़ी में रहता हुआ कोई हो, कोई राजा हो, प्रधानमंत्री हो, कोई राज्य का मुख्यमंत्री हो, या बहुत बड़ा पैसे वाला कोई उद्योगपति हो, सबके लिए इस संविधान के जो भी रूल्स है, जो भी है, वो सबको लागू होता है। लेकिन बहुत अच्छी बात बताई, आज इस देश में 140 करोड़ से ज्यादा बस्ती है, दलित है, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, गरीब हैं, लेकिन जो कानून है, जो संविधान का जो रूल्स चलता है, जो शासन पर बैठे हैं, जो शासन कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राज्य के मुख्यमंत्री हो, ये सब राज्य में कानून हो या देश का कानून हो, संविधान तो सबके लिए की, लेकिन जिस तरह जो सालों से चलता आता है, सदियों से चलता आता है, डॉक्टर आंबेडकर की जी जो सीरियल आ रही थी तो हम देखते थे कि जब पाठशाला में वो जाते थे तो उनका बाहर बिठाया जाता था, उनकी किताब इस तरह फेंकी जाती थी, स्कूल के मटके से उसको पानी पीने का मना था, अगर ऊपर से पानी देते थे तो ऐसे पानी देते थे उसको मुंह में न आए। ये जो छोटा सा बच्चा था डॉक्टर आंबेडकर भीमराव, तब से वो झेल रहा था। वो बच्चा किसका किसका था, वो लड़का किसका था, जो लश्कर में जो सूबेदार थे रामजी, उनका वो लड़का था, और उनके बच्चे को स्कूल में ना एडमिशन मिले, अगर मिले तो इस तरह उसको बैठना पड़े, ये सब वो झेल रहा था। और उन्होंने एक ठान ली थी कि मैं पढ़ू, क्योंकि उसको जिस तरह उनके परिवार को गांव में बस्ती में जिस तरह सब झेलना पड़ता था अनटचेबिलिटी, तो तब से उनके दिमाग में यह आया था। और इतनी पढ़ाई की और उन्होंने उस टाइम काराराम मंदिर वहां प्रवेश करने का, क्योंकि मंदिरों में जाने की मना थी दलितों के लिए, तो काराराम मंदिर में वो एजिटेशन किया, चौदार तालाब में पानी लेने का एजिटेशन किया कि पानी पीने का हक नहीं था, मंदिर में दर्शन करने का, भगवान का दर्शन करने का हक नहीं था, अनटचेबिलिटी इतनी थी, आज भी है कई जगह, लेकिन ये सब झेलते झेलते उसके दिमाग में जो ठस गया। आज मैं कहना चाहता हूं कि अगर पूरे वर्ल्ड में जितनी पढ़ाई डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने की आज तक किसी ने नहीं की है। प्रदेश में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बाहर दुनिया के कई कंट्री में, कोई कंट्री में अगर किसी का बस लगा हो ऐसे नॉलेज वाले, ऐसे पढ़ाई वाले, तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का लगा है। और उसके नीचे एक स्लोगन लिखा गया है, सिंबल ऑफ द नॉलेज। तो ये डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान दिया, और जो संविधान है उससे लेकर और आज जो चल रहा है देश में, और पहले से जो चलता आया है, जो बाबा साहब ने झेला है, वो आज भी कहीं गांव में, आज भी न कुएं से पानी लेना देते हैं, न उनके जल से पानी लेने देते हैं, नौकरियों में जो सर्विस है उसमें देखा जाता है किस कास्ट से हैं। डॉक्टर बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया है 7%, 14%, और कई गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पर्सनल रिजर्वेशन दिए हैं। मान लो हमारे गुजरात में 27% बख्शीपंच, यानी कि ओबीसी के लिए वो दिए हैं। लेकिन जब भर्ती होती है, जब सिलेक्शन होता है, तो उसमें भी वो देखते हैं किस कास्ट का है, क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट उनके पास रहते हैं। और जब जीपीएससी हो, यूपीएससी हो, उनकी जो एग्जाम होती है, उनके जो इंटरव्यू होते हैं, उसमें भी देखा जाता है कि किस कास्ट का है, तो उस तरह आज भी उनको कम मार्क्स दिए जाते हैं, और उसके परसेंटेज कम आने से उनको जिस तरह जॉब मिलनी चाहिए, जिस तरह आईएएस का पदवी मिलना चाहिए, जीपीएससी में, हमारे गुजरात में जीपीएससी है तो डायरेक्ट क्लास 2 में भर्ती होती है, लेकिन उसमें भी आज भी मैं चाहे गुजरात से, गुजरात में गवर्नमेंट मेरी है, बीजेपी की है, लेकिन फिर भी मैं ये खुले मन से कहना चाहता हूं ब्रह्मा कुमारी के कि आज भी वही है अनटचेबिलिटी। दिमाग में एक 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 है कि इनको ऐसी पोस्ट क्यों दी जाए, आज भी है। और मैंने कई बार अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मैंने पत्र लिखकर बताया है कि आप जब गुजरात के सीएम थे तो आपने अच्छे अच्छे कानून बनाए हैं, आपने अच्छी अच्छी बात की है, आपके शासन में आपने काफी कुछ किया है, लेकिन फिर भी जिस तरह कानून के लिए कुछ करना चाहिए, जिस तरह डॉक्टर आंबेडकर ने जो अधिकार दिए हैं, उस तरह जिस तरह देश चलना चाहिए उस चला नीचे जो लोग हैं, शासन करने वाले अच्छा सोचते हैं, शासन करने का वालों को डॉक्टर आंबेडकर जी के संविधान को लेकर चलना है। हर जगह ऐसा होता है मुझे पता नहीं है, शायद नहीं भी है कई जगह, लेकिन फिर भी जो चल रहा है आज भी हम, क्योंकि आई एम बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, मुझे पता है लोग हमारे पास बहुत आते हैं, और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं, वो पूरा क्षेत्र, वो जो सीट है वो रिजर्व सीट है, शेड्यूल कास्ट की सीट है, और बहुत बड़ी तादाद में शेड्यूल कास्ट की बस्ती है वहां पर। हम सबके घर झिकरतिया जाके काम करते हैं, मेडिकल के कैंप लगाते हैं, एजुकेशन के कैंप लगाते हैं, अभी वैकेशन खत्म हुआ, स्कूलें शुरू हुई तो कई जगह हमने पाठशाला में जाकर या जौगी झोपड़ी में जाकर पर्चियां दी, कॉपी दी, बुक्स दी। हमारा प्रोग्राम हर साल रहता है, क्योंकि हम जिस बस्ती से आते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी भी एक टेक्सटाइल मिल के मजदूर थे, और मैं भी एक मजदूर बाप का बेटा हूं, मैंने देखा है कि जो हमने सहा है वो आज भी हम सहते आए, आज भी हमारे पर एट्रोसिटी होती है, बहुत होती है। इसके लिए आज बहुत अच्छी बात यहां पर हुई है कि जिस बात को हम उजागर हमने किया है, हमें दुख भी है और हमें बाबा के घर में इस बात को लेकर जब अपने ब्रह्मा कुमारी आए हैं तो हमें बहुत बड़ा नाज है। हम सलाम करते हैं, ओम शांति।
थैंक यू परमार जी। हमारे देश में एक इश्यू है, वो है कि वुमेन्स एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण का। बोला जाता है कि अभी भी ये महिला है जो घर में फैमिली का सेवा करते हैं, उनको जितना गौरव से सम्मान से देखा चाहे देखना चाहती है फिर भी नहीं मिल रहा है। इसके ऊपर मैं ब्रह्मा कुमारी साधना बहन जी से पूछ रहा हूं कि ब्रह्मा कुमारी इस आश्रम में महिला सशक्तिकरण का बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि ये विश्वविद्यालय महिलाओं से चलाया जा रहा है, बहुत पुराना है, 90 ईयर ओल्ड है, और शायद सारी दुनिया में इतना बड़ा संस्था नहीं है जहां महिलाओं से ये चला जा रहा है। तो साधना जी, महिला सशक्तिकरण के बारे में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में क्या क्या स्टेप्स ले रहा है?
ओम शांति। भाई जी ने बहुत ही अच्छा विषय हमको दिया है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, ऐसे कहा जाता है कि एक नारी को अगर आपने शिक्षित कर दिया तो आपने पूरे परिवार को शिक्षित कर दिया। बच्चे की प्रथम माँ के साथ साथ जो शिक्षिका है वो माँ ही है, उसको माँ की पालना भी देती है और टीचर बन करके उसको अच्छे संस्कार भी देती है। हम ऐसे बहुत सारे बच्चे देखते हैं जो समाज में चोर हैं, डाकू हैं, चरित्रहीन हैं, रेपिस्ट, चाइल्ड अब्यूज बहुत हो रहा है, अल्कोहल ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। और दूसरी तरफ हम ऐसे भी बहुत सारे बच्चे देखते हैं अब्दुल कलाम जी जैसे, लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे, विवेकानंद जी, गौतम बुद्ध जी जैसे। हमने जो अपने सेंटर्स पर देखा है, माता पिता बच्चों को लेकर के आते हैं और बच्चों के बारे में वो कुछ कुछ कंप्लेंट्स भी करते हैं और बच्चों को वो ट्रेनिंग देने के लिए कहते हैं। पर यहाँ मैं ये कहना चाह रही थी कि अच्छे संस्कार जिन बच्चों को मिलते हैं वो प्रथम गुरु उनकी माँ ही होती है, और जिन बच्चों के संस्कार अच्छे नहीं हैं और वो सोसाइटी में उच्छृंखलता मचाते हैं, सोसाइटी को पतन की ओर लेकर के जाते हैं, उसका भी बहुत एक बड़ा कारण माता पिता में भी विशेष माँ, क्योंकि बच्चा जो है वो पिता से भी अधिक समय जो है अपनी माता के साथ व्यतीत करता है। माँ उसको जो कहती है वो शायद हो सकता है वो कम सुने, पर क्योंकि वो माँ के साथ बहुत अधिक समय रहता है तो माँ के अंदर वो जो संस्कार देखता है उसके कर्मों के रूप में, आचरण में, व्यवहार में, वो उसको बिना ट्रेनिंग के ही वो उसको मिल जाते हैं। आपने कहानी सुनी होगी एक छोटे बच्चे की, वो स्कूल जाता था और स्कूल में एक बार कोई दूसरा बच्चा कुछ अपना पेंसिल कुछ डायरी वो छोड़कर चला जाता है और ये अपने घर लेकर के आ जाता है। माँ को सुनाता है पर माँ उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती है, वो चाहती तो उसको शिक्षा दे सकती थी ईमानदारी की, सच्चाई की, कि जाओ इसको लौटा करके आना, पता करना ये किस बच्चे का है। और धीरे धीरे इस तरह से चीजें उठाने की उसकी आदत पक्की होती जाती है और फिर ये आदत चोरी के रूप में बदल जाती है और वो बच्चा बड़ा होकर के चोर बनता है, बहुत बड़ा चोर। और चोरी के अपराध में एक बार उसको फिर उम्र कैद, फांसी की सजा उसको सुनाई जाती है। और जब उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है, उसको फांसी के लिए लाया जाता है, तो जैसा कि अपराधी से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, उस बच्चे से भी पूछा जाता है, उस चोर से जो कि अब बड़ा हो गया था, तो अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा मुझे मेरी माँ से मिलाओ। और माँ जब उसके नजदीक आती है, माँ मुझे आपको कुछ कहना है, अपना कान नजदीक लेकर के आओ। और जैसे ही माँ अपना कान नजदीक लाती है उसका कान काट देता है। सभी हैरान हो जाते हैं तो इस बच्चे ने ऐसा क्यों किया, तो बाद में वो ये सुनाता है कि ये जो मेरा चोरी का संस्कार पड़ा, आज जो मैं कटघरे में हूं और मेरे को फांसी की सजा आज जो मेरे को मिली है, उसका कारण जो है वो ये मेरी माँ है। अगर ये बचपन से ही मेरे को दिव्य गुण जीवन में सिखाती, नैतिक मूल्य सिखाती, मुझे अच्छे संस्कार देती, तो आज मैं यहां पर ना होता। बहुत माओं को हमने ऐसा भी देखा है जो कंपैरिजन करते हैं अपने बच्चों के अंदर, क्योंकि हमारे सेंटर्स पर आते हैं पेरेंट्स और उनके बच्चे, तो कोई बच्चा बहुत डिप्रेस होता है एक ही फैमिली में और एक बच्चा बहुत खुशी और उमंग उत्साह में, हमेशा बहुत एंथुसियाज्म में, कुछ जीवन में करना है, बहुत एम्बिशियस। तो क्यों डिप्रेशन में है ये बच्चा, क्यों इतना लो फील कर रहा है, कारण बताते हैं बच्चे, हमारी माँ जो है ना वो हमेशा कंपैरिजन करती है हम दोनों भाई बहनों के बीच में, तो इसको हमेशा एनकरेज करती है, शाबाशी देती है, इसको आगे बढ़ाती है, इसको अच्छे अच्छे बोल बोलती है, और मेरे को ऐसा सुनाया जाता है, मेरे को ऐसा ऐसा कहा जाता है। अर्थात बचपन से माता पिता, और उसमें भी जैसा मैंने कहा विशेष माँ, जो बच्चों के अंदर बीज बोती है वही बीज बड़े होकर के फलीभूत होते हैं, उनके सब कॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। तो माँ जो है, नारी जो है, वो प्यार की, क्षमा की, करुणा की, दया की, स्नेह की, सहनशीलता की, समाने की शक्ति की, आदि आदि अनेक गुणों की माँ जो है वो प्रतिमूर्ति है। भगवान ने, प्रकृति ने स्वाभाविक रूप से उसको वो गुण गिफ्ट के रूप में दिए हैं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो निराकार स्थापक हैं इस संस्था के, 1936 में उन्होंने, आप जो हमारे पीछे फोटो देख रहे हैं, आपने 3 दिन के योग शिविर में भी सुना होगा, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो साकार माध्यम है उनके तन में प्रविष्ट होकर के सिंध कम्युनिटी में, उस समय नारियों की बहुत ही दयनीय दशा थी, उनको पढ़ने लिखने के मौके भी नहीं मिलते थे, बहुत ही उनको नीची दृष्टि से देखा जाता था, और उसी समय में शिव बाबा ने पिता श्री ब्रह्मा बाबा के मुख से कहा कि नारी को आगे लेकर के आओ, ये नारी जिनको शास्त्रों में कहा गया नरक का द्वार है, परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा कि ये स्वर्ग का द्वार है, इन नारियों के द्वारा ही सत्ययुग के द्वार खुलेंगे। और उसी समय से पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने जगदम्बा माँ, उनके ऊपर सारी जवाबदारी सौंप दी, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय के फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बने, और जगदम्बा माँ ने आज जिनको हम अपनी प्यारी दादियां कहते हैं, दादी प्रकाशमणि जी, दादी गुलजार जी, दादी जानकी जी, अनेक दादियां, जगदम्बा माँ ने उनको प्यार से पालना दी, उनको श्रेष्ठ संस्कार दिए, उनके अंदर वो वैल्यूज इनकलकेट की, दादियों ने अपना वो जीवन बनाया जगदम्बा माँ को देखकर, क्योंकि वो साक्षात उनके सामने ऐसा एग्जाम्पल भी थी, न सिर्फ शिक्षा दी लेकिन एग्जाम्पल के रूप में भी वो उनके सामने थी। और फिर उन्हीं दादियों ने काफिला आगे बढ़ता चला गया, 1936 के बाद 1950s में माउंट आबू आए, और यहाँ आने के पश्चात हमारी ये सभी गुणों की प्रतिमूर्ति दादियां, ये देवियां, ये नारियां भारत के चारों दिशाओं में चले गए, विश्व के कोने कोने में चले गए, और इन्होंने हजारों लाखों परिवारों को प्रशिक्षित किया, और उसमें भी विशेष रूप से कन्याओं को और माताओं को इन्होंने आगे लाया। आज वर्ल्ड वाइड ब्रह्मा कुमारीज के जितने भी सेंटर्स हैं, इन सभी सेंटर्स का ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका संचालन भारी तादाद में नारियां कर रही हैं। तो हमारे यहाँ पर जो भी सेंटर्स पर रेगुलर स्टूडेंट्स आते हैं, फैमिली लाइफ वाले ही आते हैं, आप सबकी तरह ही एक घंटे के लिए आते हैं, और बहनें उनको श्रेष्ठ संस्कार देती हैं, परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ शिक्षाएं देती हैं, राजयोग का उनको अभ्यास कराती हैं, जिनसे उनका अपना मनोबल बढ़ता है, उनके अंदर वो शक्ति आती है। और हमने देखा कि माता पिता जो इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं उनके बच्चों के अंदर भी अद्भुत परिवर्तन है। मैं जो कभी कभी आते हैं उनकी बात नहीं करूंगी, लेकिन जो रेगुलर पेरेंट्स आते हैं उनके परिवारों के वायुमंडल आप जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा हम आश्रम में आ गए हैं। वहाँ कोई शराब नहीं है, कोई सिगरेट नहीं है, कोई ड्रग्स नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, अर्थात कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। घर जैसे मंदिर बन गए हैं। तो वो माता पिता जो आज संस्था से जुड़े हुए हैं अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार दे रहे हैं, और ये बच्चे ही आज इस सोसाइटी और हमारे भारत देश का आधार हैं, उद्धार मूर्त हैं, आने वाले समय में इन बच्चों के द्वारा ही बहुत बड़ा विश्व का परिवर्तन होने वाला है। तो नारी सशक्तिकरण परमपिता परमात्मा शिव बाबा इस समय स्वयं आकर के कर रहे हैं। ओम शांति।
ओम शांति। सारी दुनिया में आप जैसा डेडिकेटेड सिस्टर्स कितने हैं?
सारी दुनिया में डेडिकेटेड सिस्टर्स 60,000 के अराउंड होंगे जरूर।
वंडरफुल वंडरफुल। तो रियल नारी सशक्तिकरण हो गया ना। अभी हम चलते हैं और एक टॉपिक है जो राजनीति में सामाजिक उत्तरदायित्व बहुत फोर्स से चल रहा है, वो है शिक्षा या एजुकेशन। तो कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अपने इलाके में कितना प्राइमरी स्कूल्स है, कितना मिडिल स्कूल्स है, कितना हाई स्कूल्स है, कितना कॉलेजेस है, ये सभी मालूम होता है। और जितना परसेंटेज शिक्षा से वंचित है, स्कूल में नहीं जाते अलग अलग कारण से, ये भी मालूम होता है। अभी हमारे देश में जो एजुकेशन दिया जा रहा है वो स्टैंडर्ड अच्छा है, फिर भी वो एजुकेशन सिर्फ पेट भरने के लिए यूज कर रहा है, क्योंकि वो बुद्धि का ज्ञान है, ये बुद्धि का एजुकेशन हो रहा है, मन का एजुकेशन नहीं हो रहा है। मन को कंट्रोल कैसे करें, दुख आता है तो क्या करें, नाराजगी आता है तो क्या करें, किससे फाइटिंग होता है तो क्या करें, कैसे हमको हमको कैसे कंट्रोल करें, क्या भाषा उपयोग करें, वहाँ नहीं मिलता है। इसलिए मैं हमारे सीनियर ब्रदर मेहरचंद जी बैठे हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस में स्पिरिचुअल एजुकेशन देना अच्छा है, ठीक है? स्पिरिचुअल एजुकेशन माना क्या है? क्योंकि हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन में स्कूल में ऐसे ही वो एजुकेट करना जो सेक्युलर है वो अलाउड है। तो हम यदि ईश्वरी विश्वविद्यालय का एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन कहो, कुछ भी कहो, स्पिरिचुअल एजुकेशन कहो, कहीं कहीं दिया जा रहा है, यदि गवर्नमेंट से वो यदि दे सकते हैं वो तो अच्छा है, बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए कितना अच्छा है। और ऐसा एजुकेशन हमको क्यों चाहिए? और ये यदि सेक्युलर का फाउंडेशन ये डेफिनेशन में आता है क्या, आपसे निवेदन करता हूँ।
ओम शांति। क्या बात है, आप लोगों ने दोपहर का खाना नहीं खाया? ओम शांति, ओम शांति। थोड़ा जागरूक तो हुए ना। मैं सर्वप्रथम सम्मानित मंच तथा राजनीतिक पर से जुड़े हुए भाई बहनों, आप लोगों के लिए चार लाइनें दे रहा हूं। कुछ लोग भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं, कुछ लोग भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं, कुछ लोग अपनी पहचान बना जाते हैं, जो सेवा को जीवन का आधार बना ले, जो सेवा को जीवन का आधार बना ले, वो हर दिल में अपना स्थान बना लेते हैं, वो हर दिल में अपना स्थान बना लेते हैं। बहुत अच्छी बात करी मंच सचिव ने, क्योंकि भारतवर्ष आजाद होने पर धर्म निरपेक्ष डिक्लेयर हो गया और धर्म निरपेक्ष का अर्थ लोगों ने धर्म रहित कर दिया है। आज देश धर्म रहित होता जा रहा है धर्म निरपेक्ष के नाम पर। विद्यालयों में आध्यात्मिक शिक्षा गौण है क्योंकि उसकी वैल्यू का पता नहीं है। प्राचीन काल में जितने भी राजा होते थे उनके गुरु हुआ करते थे, वो अपने गुरु के अनुसार कार्य करते थे। महाराज शिवाजी मराठा समर्थ रामदास के बिना कोई निर्णय नहीं लेते थे। अंकुश होता था एक, परंतु आज राजनीतिक वर्ग पर कोई अंकुश नहीं है। विधायक चुना गया वो मस्त है, अब जो मर्जी करे। विधायकों को कोई आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि उनको कैसे चलना है जीवन में। वो फ्री हैं क्योंकि आध्यात्मिकता जीवन से संन्यास ली हुई है। सरकार का आध्यात्मिकता के प्रति कोई भी रोल नहीं है। आध्यात्मिकता के बारे यहां जिक्र हो रहा है। लोग कहते हैं कि यदि किसी धर्म की शिक्षा दी गई हो गलत है। हम ये कहते हैं भले कोई पूजा पाठ पद्धति ना सिखाई जाए परंतु वैल्यूज की शिक्षा तो दी जा सकती थी जो किसी धर्म का हिस्सा नहीं है। सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, चरित्र, सरलता, ये जो गुण हैं इन गुणों की शिक्षा तो बच्चों को दी जा सकती थी, तो किसी धर्म का वो नहीं है रिश्ता। आज वैल्यूज नहीं दी जा रही हैं केवल इस नाम पर के भारत धर्म निरपेक्ष है। वैल्यूज तो हर धर्म में है। वैल्यूज तो में तो कहीं परमात्मा भी नहीं आता, परंतु इस विषय पर आज तक देश को आजाद हुए कितने वर्ष हो गए किसी ने विचार नहीं किया। आज राजनीतिक लोग कहते हैं कि आज विद्यार्थी वर्ग अंकुश में नहीं है। आज हड़तालें खड़तालें पड़तालें कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में चलती रहती है। एक रजिस्ट्रार था यूनिवर्सिटी का, कहता मैं तो त्याग पत्र दे रहा हूं। मैं क्यों? कहता हर रोज बच्चे आके मेरी बेइज्जती कर जाते हैं। अब देखिए कितनी चरित्रहीनता है। कहां तो बच्चे अध्यापक के पैरों में हाथ लगाते थे, झुकते थे, उनका आदर करते थे, और आज ये स्थिति बनी क्यों? धर्म निरपेक्ष इस शब्द के कारण बनी है। इसलिए आध्यात्मिकता बहुत जरूरी थी। हमारे राजनीति कैसे होने चाहिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक बार महाराजा अशोक के समय में अकाल पड़ गया। महाराजा अशोक ने डिपो खुलवा दिए। महाराजा अशोक गुप्त रूप में घूमते थे। एक जगह उसने देखा कि 5 बजने वाले हैं, 1 मिनट है। एक बूढ़ा अनाज के लिए गिड़गिड़ा रहा है कि मेरे घर में अनाज नहीं है, मुझे दिया जाए। वो कहने लगे 5 बज चुके हैं, ताऊ कल आना। वो कहता है मेरे घर में भूखे मर रहे हैं बच्चे। महाराजा अशोक सुन रहा है एक तरफ खड़ा हुआ, वेश बदला हुआ था, कर्मचारियों को कोई पता नहीं था, और कर्मचारी इस बात पर अड़े हुए कि हम तो जा रहे हैं कल आना। तब महाराजा अशोक आगे बढ़े, पोजीशन को देखकर हालात कैसे हैं। उसने कहा इस बूढ़े को अनाज दिया जाए अपना। वो दिखा दिया मैं कौन हूं। उन्होंने बूढ़े को अनाज दे दिया, बूढ़े ने बोरी भरवा ली। वो तो डिपो बंद करके चले गए। महाराज अशोक भी एक तरफ हो गए। अब वो बूढ़ा बोरी उठा न सके, बड़ी कठिनाई आ रही थी। वो तो उन्होंने उसको बोरी नहीं उठवाई, अकेला कैसे उठाए। महाराज अशोक आए, कहने लगे ताऊ ऐसे कर, ये बोरी तो मेरे सिर पर रखवा दे और आप आगे आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे आपके घर छोड़ जाता हूं। अब उसको तो पता नहीं है कौन है, उसको तो हेल्प मिल गई। महाराज अशोक उनके घर जाके जब बोरी नीचे डाली, पुत्र वधु ने पहचान लिया ये तो देश का राजा है। उसने अपने ससुर को कहा, पिताजी ये क्या किया आपने, बोरी किससे उठवा कर लाए हो, क्यों कौन है? महाराज अशोक। वो पैरों पड़ गया बूढ़ा, मैं क्षमा मांगता हूं। उसने कहा नहीं, ये मेरा दायित्व है अपनी प्रजा के प्रति, मैंने कोई एहसान नहीं किया। तब उसने कहा बूढ़े ने कि आप लोगों प्रजा पर राज नहीं करते, आप प्रजा के दिलों पर राज करते हैं। आज का राजनीतिक प्रजा के दिलों पर यदि राज कर ले, उसको हमेशा लोग विधायक बनाते चले जाते हैं और अपनी पलकों पर बिठाते हैं। तो आज की जो शिक्षा है वो उचित नहीं है। प्राचीन काल में गुरुकुलों में लोग पढ़ते थे, राजकुमार भी जाके गुरुकुल में पढ़ते थे, राजकुमार भी वो कार्य करते थे जो एक आम बच्चा करता था। वहां कोई ये नहीं था ये राजकुमार है ये दूसरा नोक। राजकुमार की शिक्षा पूरी माता पिता राजा रानी लेने चले गए, गुरुजी को पता था कल इसके माता पिता आएंगे, उसने बच्चे को पीट दिया राजकुमार को। राजकुमार बड़ा हताश हुआ, इतने सालों में तो कभी गुरुजी ने कुछ कहा नहीं और आज मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे पीट दिया है। राजा रानी आए, उन्होंने देखा, उसने कहा बेटा आपने कोई शरारत की होगी, ऐसे तो गुरुजी नहीं पीटने वाले। उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने गुरुजी से पूछा कि बच्चा हताश है दुखी है, आपने उसको मारा है, क्या शरारत की है उसने? गुरुजी ने कहा बच्चे ने कोई शरारत नहीं करी और मैंने पीटा है। राजा रानी कहने लगे गुरुजी से कारण? कहता कारण बताता हूं, बच्चे को बुलाओ। राजकुमार को बुला लिया गया, उसने कहा बेटा ये मैंने तेरे को लास्ट शिक्षा दी है, कल को आपने राजा बनना है, आप राज सिंहासन पर बैठकर किसी के साथ अत्याचार नहीं करोगे, क्योंकि आज आपके अपने ऊपर अत्याचार दिख रहा, आपको फीलिंग आ रही, दुख आ रहा है, तो आप भी अपने जीवन में कभी किसी को उस्ताओगे नहीं। तो इस ढंग से गुरु लोग शिक्षित करते थे, उनको नैतिक मूल्यों से भरते थे, परंतु आज की शिक्षा प्रणाली नैतिक मूल्यों पर आंसू बहा रही है। न किसी को ऊपर फिक्र है न नीचे, और आज हमारे जमाने में भी हम मां बाप से डरते थे, गुरुओं से डरते थे, और आज गुरु और मां बाप बच्चों से डर रहे हैं। कितने पतन हुआ है चरित्र का। इसलिए शिक्षा प्रणाली में जब तक आध्यात्मिक मूल्य नहीं आएंगे, बच्चों को आध्यात्मिक मूल्यों से शिक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक इससे भी दुस्तर हालत होती चली जाएगी। तो हमें इस पर विचारना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय नैतिक मूल्यों की शिक्षा दे रहा है सबको, और यहां पर जो भाई बहन आते हैं उनमें नैतिक मूल्य ऑटोमेटिक आ रहे हैं, वो खुश हैं, शांत हैं, स्थिर माइंड हैं, हर मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि नैतिक मूल्यों से भरपूर हैं, कोई चिंता नहीं है, सदा खुश रहते हैं। हमारे विधायक महोदय जो सुना रहे थे, हकीकत सुनाई है। तो देखिए यदि आप यहां इस ज्ञान को समझ जाएंगे, ये स्पिरिचुअल एजुकेशन है और इससे हमारा जीवन सुधरेगा। हमारे इतिहास में गांधी जी एक राजनीतिक संत थे। मैं एक एग्जांपल उनकी ये घटना दे रहा हूं। एक दिन उनके वहां चोर आ गया, रात को चोर को पकड़ लिया गया और सवेरे गांधी जी के पास पेश कर दिया गया। बापूजी ने पूछा, ये चोर नहाया है, इसको नाश्ता कराया है? वो कहते हैं जी ये चोर है। कहता, चोर तो है पर इंसान तो होगा। उनको नहलाया धुलाया गया और उसको नाश्ता करा के फिर बापूजी के पास पेश किया गया। चोर ने कहा, बापूजी आज से मैं आपका शिष्य तब स्वीकार करता हूं और भविष्य में मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। देखिए बदलाव उत्पन्न हुआ। आज हमारे में इतने शक्ति है कि हम समाज में बदलाव उत्पन्न करें। यह शक्ति आज समाज हमें चाहिए थी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय इसी दिशा में कार्य कर रहा है, समाज को बदल रहा है। जो लोग आते हैं आध्यात्मिक मूल्यों से भरपूर होते हैं और अपने जीवन में खुशी महसूस करते हैं, उनके जीवन में बदलाव आ जाते हैं। मैं लास्ट में आपको चार लाइनें और दे रहा हूं। जो नेता, जो राजनीतिक वर्ग से जुड़े लोग हैं उनके लिए बोल रहा हूं, यदि आप सच्चे सेवक हैं समाज के, आप विधायक बनकर आते हैं और विधायक के नशे में रहते हैं तो आप सच्चे सेवक नहीं हैं। आप समाज के सेवक बनकर रहना है, तब हर लब पर आपका नाम होगा, हर लब पर आपका नाम होगा, हर कदम पर आपको सलाम होगा। समाज की सेवा दिल से करते रहना मेरे दोस्तों। यह वक्त भी एक दिन आपका गुलाम होगा, ये वक्त भी एक दिन आपका गुलाम होगा। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू मेहरचंद जी। अभी हमको 5 मिनट टाइम है, आपसे किसी को किसी प्रश्न पूछना है तो आप वहां ही खड़े होकर के पूछ सकते हैं किसी से। हमारे से आपको यदि प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम मेडिटेशन से समाप्त करते हैं। प्रश्न है किसी का? ओके, थैंक यू। आप बोलिए ना, बोलिए।
ओम शांति। मंच पर विराजित सभी भाई बहनों का अभिनंदन, सदन में मेरे साथ विराजित सभी भाई बहनों को जय श्री राम। मैं वीरेंद्र रघुवंशी, मध्य प्रदेश शिवपुरी से 2 बार विधायक रहा हूं पूर्व में। जनसेवा से आगे बढ़कर राजनीति में आने के बाद जनसेवा का अवसर मिला। बड़ी विडंबना के साथ ये प्रश्न मैं रख रहा हूं पैनलिस्ट भाइयों के समक्ष कि इस पर भी राष्ट्र को, समाज को और आम जन को, मतदाता को विचार करना होगा। मेरी कार्यशैली सदैव बहुत स्पष्ट रही है वहां मध्य प्रदेश में। कांग्रेस से भी विधायक रहा, अभी वर्तमान में बीजेपी से था, और इस बात को मैं विधानसभा सत्र में अपने मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहता रहा। कई बार मेरे विवाद अखबारों में और वीडियो पर भी प्रचारित हुए हैं। मैं आम जन की बात को लेकर के अपनी सरकारों से भी झगड़ता रहा। एक ही प्रश्न मैं करूंगा कि वर्तमान में जो देश में लोकतंत्र या प्रदेशों में लोकतंत्र की व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, उसमें निश्चित रूप से मैं अपने को भी शामिल करता हूं। अपने आप को बहुत साफ सुथरा न बताकर कहीं गलतियां हुई होंगी, हालांकि इन वर्तमान परिस्थितियों से मैं बहुत दूर रहता हूं। जो भी हमारे भाई बहन राजनीति में रहते हैं उन्हें बड़ी विडंबनाओं का सामना करना पड़ता है। वर्तमान युग आधुनिक युग है, पैसे का युग है। बाहुबली और पैसे वाले लोग और बड़े नेताओं के सिपासालार कहें या कार्यकर्ता कहें या राजनीतिक भाषा में यहां कहना ये शब्द उचित नहीं लग रहा, बड़े नेताओं के चमचे भी कहलाते हैं। पर आम जन को भी ये शिक्षा हमें सबको देने की जरूरत है, कि वह नीचे से ऐसा संदेश दें कि ये पैसे का वितरण, लोभ लालच की चीजों का वितरण करके जो लोकतंत्र को प्रभावित राजनीतिक पार्टियां हम सब प्रभावित प्रत्याशी प्रभावित करते हैं, इस पर प्रतिबंध कैसे लगे? ये चर्चा का विषय पूरे राष्ट्र में हो, ऐसी मेरी भावना है। और आम जन तक ये बात जाए कि इस पर ब्रेक लगाने के लिए आम जन को, मतदाताओं को आगे आना पड़ेगा। पार्टियां और प्रत्याशी हम सब मिलकर, अब उस करप्शन में जनता को भी हमने शामिल कर लिया है। नकदीकरण की जो योजनाएं सरकारें सत्ता में वापस आने के लिए जनता तक भेज रही हैं, उसे मैं व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार के रूप में देखता हूं।
थैंक यू। प्रश्न क्या है आपका?
प्रश्न यही है कि ये विषय भी इन चर्चाओं में सम्मिलित हो कि जनता जनार्दन ईमानदार लोगों का चयन करे, पार्टियों में न बंधे, तब ये लोकतंत्र की दशा और दशा सुधरेगी। मेरा ये पैनलिस्ट और सभी राजनीतिक साथियों से आग्रह है कि इस विषय को हम नीचे तक ले जाएं, कि आप ईमानदारों को चुनें, पार्टियों में न बंधें, अच्छे लोग जनप्रतिनिधि बनेंगे तो ये राष्ट्र भी विकास करेगा, लोकतंत्र भी स्वस्थ होगा और पार्टियां भी अच्छे लोगों को निश्चित रूप से चुनाव लड़ने का अवसर देंगी।
Okay.
ये चिंतन का विषय है।
थैंक यू, थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। तेजपाल सिंह जी,
अभी मेरे साथी ने एक प्रश्न किया, मैं अपने बारे में बताता हूं। मैं जब पढ़ता था, मेरी शुरू से रुचि समाज सेवा में रही, जनसेवा में रही, और पढ़ते समय मैं मिहिरबोज पीजी कॉलेज दादरी में, जहां से मैं विधायक हूं, पहले छात्र संघ के चुनाव होते थे स्टूडेंट यूनियन के, उसका मैं छात्र संघ का जनरल सेक्रेटरी रहा, अगले साल चुनाव में प्रेसिडेंट बना, फिर मैं टीचर हो गया। टीचर रहते हुए, क्योंकि तीन तरह के विद्यालय होते हैं, एक होते हैं राजकीय विद्यालय हमारी यूपी में, दूसरे होते हैं एडिड विद्यालय, तीसरे होते हैं सेल्फ फाइनेंस के विद्यालय। तो राजकीय विद्यालय का टीचर चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में जो एडिड स्कूल है उसका टीचर चुनाव लड़ सकता है। मैं टीचर रहते हुए, क्योंकि मुझे समाज सेवा करने का बचपन से शौक था, जब मैं छोटा सा था तो मुझे सहकारी संघ का अध्यक्ष का चुनाव हुआ कोऑपरेटिव में, मैं वो लड़ा। फिर मैं सोचता था कुछ जनरल चुनाव लड़ूंगा। 1995 में जिला पंचायत के चुनाव जनरल हुए, पहले प्रधानों के द्वारा होते थे जिसमें भ्रष्टाचार होता था। जब जनरल हुए तो मैं 95 में जनरल चुनाव लड़ा जिला पंचायत का अपने वार्ड से, और मैं 4000 वोटों से जीता। मैंने देखा कि जब जिला पंचायत के मेंबर चेयरमैन चुनते हैं तो उसमें भ्रष्टाचार होता था। मैंने, क्योंकि मैं शिक्षक था, हम बच्चों को संस्कार देते थे, बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते थे, तो मैंने, मेरे पास बहुत ऑफर आए कि पैसा ले लो, मैंने पैसा नहीं लिया। मैं भाई साहब की बात पे इन बातों को शेयर कर रहा हूं। फिरसरों में हमारा जिला गाजियाबाद था, गाजियाबाद में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन बना, वो हमारे विरोध में बना, और उसने बनते ही कहा, कह देना मास्टर जी से अब उसका विकास करा दूंगा, क्योंकि मैंने उसे वोट नहीं दी थी। 2000 में पुनः चुनाव हुआ, पहली बार 4000 जीता, 2000 में 4500 वोटों से जीता। हमने जनता की सेवा मन से की, और फिर 2005 में फिर चुनाव हुआ, फिर मैं 5200 वोटों से जीता, बढ़ते क्रम में जीता। मैंने जनता का विश्वास जीता, जनता की मन से सेवा करी। फिर हम सोचते थे कि विधायक बन जाएं, लेकिन जो भाई साहब ने बात कही अभी, हम पर पैसा नहीं था, हम एक सामान्य परिवार में किसान के घर पैदा हुए, सामान्य शिक्षक थे। इसी बीच में मेरा इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए आयोग चयन बोर्ड इलाहाबाद से सिलेक्शन हो गया। मैं, स्वर्गीय राजेश पायलट जी कांग्रेस के नेता रहे हैं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में उनका गांव है वैदपुरा, वह इंटर कॉलेज प्रिंसिपल हो गया। मैं शुरू में बचपन में जब छोटा सा था कांग्रेस में रहा था और पायलट साहब से बहुत प्रभावित था, तो मैंने वो जब मैं जाता था उनके पास जब मैं नया नया शिक्षक बना तो वो मुझसे पूछते तेजपाल मेरा स्कूल कैसे ठीक हो सकता है, मेरा कॉलेज कैसे ठीक हो सकता है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और राजस्थान की राजनीति करते थे। तो मैं जब प्रिंसिपल बन गया तो मैंने सोचा कि अपना ट्रांसफर वहां वैदपुरा को करा लूं, पायलट साहब के गांव को, और पायलट साहब जो मुझसे पूछते थे उनके सपने को साकार करूं। मैंने वहां पहुंचकर कॉलेज में इतना काम किया कि वहां के लोग कहने लगे, आज के 10-15 गांवों के लोग, कि भाई अगर ये एमएलए बन गया तो कितना काम करेगा, प्रिंसिपल के रूप में इतना काम करा है। और उसी कार्य का कारण था कि मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा शिक्षा क्षेत्र में अच्छे काम करने पर राज्य पुरस्कार मिला। फिर मैं एमएलए का टिकट इसलिए नहीं मिलता था मुझे, मैं सोचता था तू बार बार 6 चुनाव जीत चुका अब तक, लेकिन जो आप बता रहे इसी कारण टिकट नहीं मिलता था। मैंने भाजपा ज्वाइन करी, भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2017 में विधायक बनने का मौका दिया। जब टिकट मांग रहे थे तो लोग कह रहे थे कि भाई तेजपाल मास्टर है, क्या चुनाव जीतेगा, पैसा इसके पास है नहीं। और हमारे माननीय विधायक जी ने भी पैसे की बात करी, आपने पैसे की बात करी, मैं अपना उदाहरण दे सकता हूं कि मुझे बिगर पैसे टिकट मिला और मैं जनता का मैंने इतनी सेवा करता हूं, राज्य में इतनी सेवा करता हूं, वो उसी का कारण है। और पार्टी भाजपा हाईकमान ने भी पहचाना कि बिगर पैसे टिकट मिलता है, ये बात सही है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती भी मेरे यहीं बादलपुर की रहने वाली थी। ये बात सही है कि बहुत सी पार्टियों में भ्रष्टाचार होता है, और राजेश पायलट जो मेरी विधानसभा क्षेत्र वैद्यपुरा के रहने वाले थे, मैं मानता हूं बहुत सी पार्टियों में भ्रष्टाचार होता है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है और मैंने स्वयं देखा है कि मेरे पास एक पैसा नहीं था। दूसरे प्रत्याशी जो टिकट मांग रहे थे वो कहते थे कि कैसे चुनाव लड़ेगा, इसके पास पैसा है नहीं, मास्टर है, क्योंकि मास्टरों के बारे में धारणा है, अध्यापक के बारे में धारणा है कि इन पर पैसा नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा व्यापार भी नहीं था, कोई बिजनेस भी नहीं था, हम तो एक साधारण किसान थे, किसान के घर में पैदा हुए। तो मैं इसका उदाहरण हूं कि मुझे बगैर पैसे टिकट मिला, और मैं इतनी सेवा करता हूं, आज भी इतनी सेवा करता हूं, क्योंकि सेवा का भाव मेरे मन में बचपन से है। कि पहली बार मैं जब कोई उम्मीद भी नहीं करता था बहन जी का क्षेत्र होने के कारण, क्योंकि बसपा का विधायक था, और मैंने कहा था कि मुझे एक बार टिकट दे दो, मैंने छोटे छोटे चुनाव लड़े हैं, फिर मैं 82,000 वोटों से जीता जब कोई उम्मीद नहीं करता था, और दूसरी बार जब मुझे टिकट मिला तो 1,40,000 वोटों से जीता मैं। तो मैं मानता हूं कि ईमानदारी का भी स्थान है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें ईमानदार लोगों की कीमत है, ईमानदार लोगों को महत्व मिलता है, और अगर ईमानदारी से महत्व नहीं मिलता तो आज शायद मैं विधायक नहीं होता। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, लेकिन जो दल इस तरह का भ्रष्टाचार करते हैं उनसे मेरी सब राजनीतिक लोगों से अपील है कि ऐसे दलों का बहिष्कार करें और भारतीय जनता पार्टी को चुने। ओम शांति। और भाइयों, मैं आज एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि एक मंच है यहां पर कहने का मौका मिला है, तो मैंने आपका उत्तर दे दिया कि क्योंकि मेरा सेवा करने का मकसद बचपन से है, सेवा भाव मेरे अंदर बचपन से है। मैं ब्रह्मा कुमारी जिस का सम्मेलन जो आज यहां हो रहा है, जिसमें मुझे बुलाया गया है, मैं इनके मिशन से जब जुड़ा, ग्रेटर नोएडा में ललिता दीदी जी हैं, उनके संपर्क में आया, तो मेरे मन में भाव आए कि भाई ये तो बहुत बड़ा संगठन है। और जब मैंने इतिहास पढ़ा बाबा ब्रह्मा जी का कि वो किस तरह से बिजनेस छोड़ करके और किस तरह से इतना बड़ा उनने खड़ा कर दिया, इतना बड़ा ये बना दिया कि आज दुनिया के 140 देशों में माना जाता। मैं भी इनसे बहुत प्रभावित हुआ, और प्रभावित होकर के मैं आज दूसरी बार यहां आया हूं। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है 2027 में, जब कोई चुनाव लड़ता है तो वो अपना ज्यादा समय क्षेत्र में देता है, लेकिन मैं इनसे प्रभावित होकर, इनके कार्यों से प्रभावित होकर के, इनकी जो जनसेवा है, जो समाज सेवा ये करते हैं, जो देश को एक सूत्र में पुरोने का कार्य करते हैं, उसी से प्रभावित होकर आज मैं आया हूं। और मैं आकर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और आज मुझे गर्व है कि मुझ जैसे छोटे से आदमी को भी मंच पर बैठा कर इस परिचर्चा में शामिल किया है। मैं ब्रह्म कुमारी जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कितने इतनी ताकत दे कि इनका जो ये अभियान चल रहा है ये अभियान और तेजी से चले और भारत एक सूत्र पूरे और जो माननीय मोदी जी का संकल्प है 2047 तक हमको विकसित भारत बनाना है, ये संकल्प इस ब्रह्मा कुमारी के इस सहयोग से जो इनका जन जागरण है इससे ये जल्दी 2047 तक विकसित भारत बनने में बहुत मदद मिलेगी। मैं इनका बहुत आभारी हूं और मैं ललिता दीदी का भी जो मुझे यहां पर लेकर आई हैं और मैं 8-10 आदमियों के साथ आया हूं, मैं इसमें हर साल आऊंगा और मुझसे जो भी इनकी सेवा बन पाएगी और मैं इससे जो मैंने यहां सीखा है 3 दिन में सीखूंगा, मैं अपने क्षेत्र में जाकर के और दुगनी सेवा करूंगा, ऐसा इनसे सबक लूंगा, ऐसा इनसे सीखा है मैंने और यही कारण है कि मैं बढ़ते क्रम में हर बार जीतता रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति,
ओम शांति। सर आपका एक सवाल था अवसर की समानता पर। अवसर की समानता में हमारे राजनीति में जो लोकसभा और विधानसभा के सदस्य गण जाते हैं उनमें भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के पक्ष में आरक्षण है, यानी सीटें वहां रिजर्व की गई हैं। मैं गुजरात राज्य का जाति का आंकड़ा सामने रखकर के सवाल करना चाहता हूं। गुजरात राज्य में शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 6.74 है, 7%। 182 सीटों के हिसाब से जो आरक्षण होना चाहिए, अगर 100% आरक्षण हो 100% तो 12.26 सीट आ रही है। और हम लोग जो बचपन से मैथमेटिक पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से 0.5 से कम है। और संविधान में भी जो आर्टिकल 55 जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव की गणना की गई है, अगर 500 से कम होता है तो उसको शून्य कहा जाता है और 500 से अधिक होता है तो 1 कहा जाता है। माननीय विधायक गण लोग बैठे हुए हैं, ये लोग मतदाता रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव में। मैं तो शिक्षक रहा हूं संविधान का, और सामान्य जन चेतना मंच मेरा एक संगठन है, उसके जरिए मैं राजनीतिक बदलाव का प्रयास कर रहा हूं। मैंने संविधान पर किताब लिखी है और संविधान पर बहुत गहरा रिसर्च करने के बाद अभी हाल ही में मेरी किताब आ रही है सच संविधान का, वो इस समय प्रिंटिंग में है, 2 दिन बाद छपकर आ जाएगी, सच संविधान का। तो मैं यह जानना चाह रहा हूं कि 12.26 सीटें आएगी शेड्यूल कास्ट की, लेकिन उनको 13 सीटें दी गई हैं। 0.76% सीटें किसकी दी गई हैं? क्या यह अवसर की असमानता नहीं है? एक बात। दूसरी बात, हमारे जितने भी माननीय विधायक गण यहां मंच पर बैठे हैं और यहां पूर्व यहां बैठे हुए हैं, जिस अनुच्छेद से यह आरक्षण चलता है उस अनुच्छेद की संख्या अनुच्छेद 334, उसकी अवधि वो 330 और 32 से चलता है, उसकी अवधि दी गई है 334 में, 334 में, उसके अनुसार उसको 25 जनवरी 1907 को समाप्त हो जाना था। 25 जनवरी 1960 को जो समाप्त होना था वो 25 जनवरी 1930 तक बढ़ाया गया है। सर्वाधिक बदला जाने वाला अनुच्छेद है 334, 7 बार संशोधन हुआ है। और फिर लोकसभा में हम अगर आरक्षण की बात करें शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मिला के 131 सीटें रिजर्व हैं, पॉपुलेशन आती है 24.31%, रिजर्वेशन 100%। अयोध्या से जब कोई शेड्यूल कास्ट के सदस्य हम लोग चुनते हैं जीतते हैं तो जश्न मनाया जाता है कि लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जनरल सीट से कोई शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई चुनाव जीत पा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब उस वर्ग के लिए 100% आरक्षण हो गया, संविधान में कहीं प्रतिशतता नहीं लिखी है, संविधान में कहीं प्रतिशत में नहीं लिखा है कि कितनी प्रतिशत सीटें रिजर्व होंगी, न तो नौकरियों में, न शैक्षणिक संस्थानों में, न तो विधायिकाओं में, फिर ये किन सरकारों ने 100% किसी वर्ग के लिए आरक्षण कर दिया है? और 100% आरक्षण करने के बाद अगला सवाल हमारा आदरणीय गिरीशचंद्र परमार जी से है, कि इनके गुजरात राज्य में
आप ये की क्वेश्चन पूछ सकते हैं
सर, वही सवाल बस इसी के बाद सवाल।
एक प्रश्न पूछने के लिए आप 10 मिनट लिया
सर, ये सवाल है बस कि आपके राज्य में जैसे हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में कहीं
संक्षिप्त में रखो
बस, हो गया सवाल आ गया, कहीं भी शेड्यूल कास्ट में भी दो चार जातियां ही डोमिनेंट, 13 की 13 सीटों पर 36 जातियों में से केवल 4 या 5 जातियां चुनाव जीतती हैं, जो जातियां बच गई उनको टिकट देना, उनको चुनाव जितवाना लोक सेवा आयोग का काम नहीं है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, बस मैं ये जानना चाहता हूं। धन्यवाद।
और इनके परमार जी के बात होने के बाद समाप्त करेंगे, वाद विवाद में हम नहीं आएंगे क्योंकि वाद विवाद के लिए हम यहां नहीं बैठे हैं, सिर्फ क्या विचार है उसको बोलने के लिए बैठे हैं बस। ओके,
भाई साहब ने जो बात बताई है शेड्यूल कास्ट में आने वाले कई जाति हैं, उसमें गुजरात में जो बात बताई रिजर्वेशन जो 7% है, 12 और 13 सीट का जो बताया, और नौकरियों में भी ये होता है, बिल्कुल सही बात है, जब लिस्ट बनता है मेरिट्स का, जो मेरिट्स में आते हैं उसको भी कई बार एससी में गिना नहीं जाता है, यानी कि वो लिस्ट में आता नहीं है, लेकिन जो सीट की बात बताई है, कई जातियां ऐसी है जो वाल्मीकि समाज है और लोअर जो बोला जाते हैं, हम लोअर नहीं बोलते, हम तो सबको एक ही जानते हैं, बुनकर और रोहित समाज जो चमड़े का काम करते हैं, दो जातियां ऊपर होती है, बाकी कई जाति ऐसी है, एजुकेशन होता है ये सब होता है, लेकिन फिर भी जो सिलेक्शन करने वाले होते हैं वो जो होते हैं वो शेड्यूल कास्ट से नहीं होते हैं, वो जाति से नहीं होते हैं, और जो बिठाए गए हैं वो ये अन्याय करते हैं, और कई बार मैंने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से और हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल से कई बार उनको पर्सनली मिलके और हमने पत्र देकर ये बताया है कि ये अन्याय होता है, और जीपीएससी के जो चेयरमैन बैठे हैं सबसे ज्यादा अगर कोई अन्याय करता है तो वो करता है, वो कोई बड़ी कास्ट से आते हैं मैं जानता हूं, लेकिन उसका मैं जिगर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इनकी जो बात है उसमें कुछ दम है, और उसके लिए हमारा आगे जो इसके लिए मैंने जो बताया कि सीएम साहब को हमने कई बार बताया है, और प्रधानमंत्री जी को मैंने इसके लिए पत्र भी भेजा है कि आप गुजरात में इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहे, तब इतना नहीं था, लेकिन पिछले जब से आप प्राइम मिनिस्टर बने तब से गुजरात में प्रॉब्लम है, एट्रोसिटी भी ज्यादा हो रही है, एज अ पॉलिटिशियन, और हम बीजेपी में है, बिलोंग वहीं से करते हैं, लेकिन फिर भी जहां हमें आवाज उठानी होती है तो हम उठाते हैं, आपके सवाल के लिए मैं भी आगे कुछ बात करूंगा कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में हम गए थे और वहां इस सब्जेक्ट में जो बात हुई तो ये बात आई है जो पूरे गुजरात में इसके लिए लोग फिक्र कर रहे हैं, और इसके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए, और जो अफसर बैठे हैं उसमें या तो चेंज करना चाहिए या तो उस पर स्ट्रिक होना चाहिए। पिछली बार 100 पीएसआई की एडवर्टाइज आई और जो रेशियो बनाया गया परसेंटेज के हिसाब से, इतने परसेंटेज शेड्यूल कास्ट, इतने ये, इतने ये, तो आगे जो भर्ती हुई थी या आगे जो जिसकी जॉब चल रही है उसमें तो शेड्यूल कास्ट सब हो गया है, तो नॉट अ सिंगल मैन इन पीएसआई भर्ती शेड्यूल कास्ट, मैंने कई बार इसके लिए बताया, तो ऐसे कई जॉब में और कई जगह पर हो रहा है, और इसके लिए मैं दोष देता हूं हमारे गुजरात के जो शेड्यूल कास्ट के विधायक हो, शेड्यूल ट्राइब के विधायक हो, उन सबको मिलकर बोलना चाहिए, बताना चाहिए, कहना चाहिए कि ये क्यों। और सबको यही बोलता है कि हम बोलेंगे, हम जाएंगे तो हम नजर में आ जाएंगे और कल हमको टिकट न मिले, लेकिन समाज के लिए, न्याय के लिए, डॉक्टर आंबेडकर ने जो हमें अधिकार दिए हैं उसके लिए हम लड़े और लड़ेंगे। उन्होंने बताया है कि संगठित बनो, संघर्ष करो, तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। आपने यहां बात बताई तो आप भी हमारे साथ आइए और हम आपको मिलाएंगे।
थैंक यू, ओम शांति,
धन्यवाद।
अभी हमें हमारे सम्मानित पैनलिस्ट को बाबा का गिफ्ट, ये नाम हमारे ब्रह्मा कुमारी सिस्टर से मैं विनय निवेदन करता हूं, और यहां आकर के इतना अच्छा बात सबके सामने रखे हैं, श्री तेजपाल जी, श्री मैरीचंद जी, नारायण दत्त शर्मा जी, श्री गिरीश चंद्र परमार जी और साधना जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। अब 2 मिनट हम योग से सब ये समाप्त करते हैं सत्र को।